पिछली बार हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें धृतराष्ट्र ने बोला कि अच्छा बताओ भैया, मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। क्वेश्चन उठता है कि मतलब ऐसा प्रश्न पूछा क्यों था। युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए हैं तो मतलब लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो फिर ये प्रश्न क्यों पूछा। समवेता युधिष्ठिर माम काल पांडवश्च किम अकुर्वत् संजय, क्या किया उन्होंने। तो ये क्वेश्चन ऐसे बेकार में नहीं था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कई बातें दिखाई देती हैं। पहली बात ये कि माम का पांडवश्च, इस श्लोक से पहले, इस धृतराष्ट्र के इस वचन से पहले सारे कौरव थे, है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र के बेटे भी कुरु वंश हैं और पांडु के बेटे भी कुरु वंश हैं, है ना। लेकिन ये श्लोक बोल के धृतराष्ट्र ने अलग अलग कर दिया कि भैया वो पांडु के पुत्र, ये मेरे पुत्र। इससे पहले इकट्ठा चल रहा था सारा बात, है ना। और धृतराष्ट्र ने प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि धृतराष्ट्र को भरोसा था कि भीष्म तो हमारे साथ है, भीष्म को कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो भीष्म सबको हरा सकते हैं, तो जहां पे भीष्म होंगे वहां पे विजय निश्चित है। तो लेकिन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ऐसा नहीं हो कि मेरे बेटे का दिमाग घूम जाए, वो बोलेगी वो धर्म क्षेत्र है, चलो क्या करनी है लड़ाई, छोड़ो बांट लेते हैं। यहाँ पांडवों के दिमाग ना घूम जाए, पांडव ना सोचना शुरू कर दें कि नहीं 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 लड़ना, चलो वन में चले जाते हैं, है ना। हालांकि बहुत कॉम्प्रोमाइज किए पांडवों ने, ये तक बोल दिया चलो 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने क्या बोला, सुई की नोक के बराबर जो है, जिस सुई की नोक जहां पे रखो जितनी जगह बनती है वो भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो दूर की बात है, भाग जाओ यहां से, है ना। सो धृतराष्ट्र ये चाहता था कि लड़ाई हो, वो ये नहीं चाहता था कि लड़ाई नहीं हो, है ना, क्योंकि उसको भीष्म पे बहुत भरोसा था उसको, तो उसको सांत्वना देने के लिए, उसको उत्साह देने के लिए अगला जो श्लोक है वो उसका जो सारथी है धृतराष्ट्र का संजय, तो वो श्लोक बोल रहे हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, ठीक है, हम जब भी श्लोक बोलें आप मेरे पीछे दोहराइए, उसके बाद फिर मैं आपको श्लोक एक्सप्लेन करूंगा। संजय वाचा दृष्टवा पांडवानिकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अब आप सुनिए, सो संजय ने कहा हे राजन, ये राजन का मतलब धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, है ना, संजय और धृतराष्ट्र इकट्ठे बैठे हैं ना। तो संजय ने कहा हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। आचार्य मतलब गुरु यहाँ पर, और ये आचार्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, द्रोणाचार्य के लिए, है ना, क्योंकि सेनापति द्रोणाचार्य थे। उस समय है ना। सो संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है, जबकि दुर्योधन राजा था नहीं उस समय, राजा तो धृतराष्ट्र है ना। फिर भी उसको उत्साह देने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र की बहुत इच्छा थी ना कि मेरा बेटा बन जाए राजा, तो उसको उत्साह देने के लिए उसने बोला कि हाँ जो जो राजा दुर्योधन वो द्रोणाचार्य के पास गया। हाँ, और द्रोणाचार्य के पास वो इसलिए गया क्योंकि उसने जब देखा कि पांडवों की सेना देखी, उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी सेना इकट्ठी कर लेंगे, उसको लगा ऐसे लुटे पिटे लोग हैं क्या, मतलब 13 साल तो भी मतलब वनवास और अज्ञातवास काट के हैं, कहाँ से आएंगे इनके पास, इतना लोग इकट्ठे कैसे कर लेंगे। फिर कृष्ण की भी अक्षौणी सेना मैंने ले ली है ना, तो इनके पास है क्या, तो ऐसा सोच के उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे। तो जब उसने देखा बहुत इन्होंने अच्छा मतलब व्यू बनाया हुआ है इन्होंने, तो वो गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास गया और उनको बताना शुरू किया। उसने कहा पश्यताम पांडु पुत्राणाम, आप लोग हो सकते हैं पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो उसने कहा हे आचार्य आप ये पांडु पुत्रों की सेना को देखो जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो द्रुपद का पुत्र कौन है, अश्वत्थामा का द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो उसने दृष्टद्युम्न क्यों नहीं बोला, उसने मतलब द्रुपद पुत्र ने क्यों बोला उसने, है ना। और द्रुपद पुत्र ने उसने इसलिए बोला क्योंकि वो उसको गुस्सा दिलाना चाह रहा था। तो गुस्सा कैसे आएगा, द्रुपद पुत्र ने बोलेगा क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद द्रुपद की पुत्री का नाम क्या है, द्रौपदी। तो जैसे द्रुपद की पुत्री का नाम द्रौपदी है ना, या उसके पुत्र का नाम द्रौपद बोल सकते हैं, है ना। सो जैसे पांडु पुत्रों का नाम है पांडव, उनको बोलते हैं, है ना। सुभद्रा के पुत्र का नाम, उसको सौभद्र बोलते हैं, अभिमन्यु, ठीक है ना। सो जैसे भगनी है, भगनी मतलब सिस्टर, भगनी के बच्चा जो है भांजे का, उसको क्या बोलेंगे, भागिनी, तो संस्कृत में ऐसा चलता है ना। सुभद्र का सौभद्र, सो द्रुपद का द्रौपद, या द्रौपदी बेटी है तो द्रौपदी, है ना। सो वो इसलिए द्रुपद पुत्र बोल रहा था दृष्टद्युम्न, क्योंकि आपस में लड़ाई थी इनकी द्रुपद और द्रोणाचार्य की। तो लड़ाई क्या थी कि दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में थे, फ्रेंड थे दोनों, लेकिन द्रुपद राजा का बेटा था, वो एक ब्राह्मण का बेटा था द्रोण, है ना। सो कभी यारे दोस्ती में उसने बोल दिया द्रुपद ने कि जब भाई जब मैं राजा बन जाऊंगा आधा राज तुझे दे दूंगा। अच्छा ये बात खत्म हो गई, फिर बड़े हो गए दोनों, अपने अपने काम में लग गए। तो द्रुपद राजा बन गया, एक बार द्रोणाचार्य का बेटा जो था वो बीमार पड़ गया, तो पैसे नहीं थे बिल्कुल, एक रुपया जेब में नहीं था। तो उसको याद आया द्रोणाचार्य को कि वो मेरा फ्रेंड है द्रुपद, तो जाके उससे मांग के लाता हूँ, भैया आधा राज दे दे मेरे को, तूने प्रॉमिस किया था। तो पहुंच गया वहां पर, पहुंच गया तो द्रुपद कहते हैं क्या पागल हो गए, कहाँ से आ गया, दोस्ती तो बराबर में होती है, तू कहाँ फटे फटे हाल ब्राह्मण मैं राजा, मतलब कहाँ की बात लेके बैठ गया। तो बड़ा गुस्सा आया द्रोण को, वापिस आ गया, फिर आचार्य बन गए द्रोण से, द्रोणाचार्य बन गए। तो उसने फिर शिक्षा दी कौरवों को, है ना, दुर्योधन इत्यादि सबको शिक्षा दी, पांडवों को भी शिक्षा दी। तो उसने उन सबने कहा अच्छा गुरु दक्षिणा क्या लोगे, तो अच्छा गुरु दक्षिणा जाओ भैया द्रुपद को बांध के मेरे पास लेके आओ, उसको हराओ। तो पहले धृतराष्ट्र के बेटे गए उसको पकड़ने के लिए, हराने के लिए। तो गए और द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा था, उसने हरा दिया उनको, भगा दिया। फिर पांडु के पुत्र गए, अर्जुन वगैरह सारे गए, तो उन्होंने द्रुपद को हरा दिया, रस्सी से बांध के ले आए। तो द्रोणाचार्य ने बोला भैया तूने तो अपना बात पूरी की नहीं, आधा राज मुझे देना था, मैं कर देता हूँ पूरी, आधा राज तू ले ले, आधा राज मैं ले लेता हूँ। तो क्या द्रुपद को बहुत अच्छा लगा, अब द्रुपद का दिमाग खराब हो गया। तो द्रुपद ने वापस आया, फिर उसने एक यज्ञ किया, और वो यज्ञ उसने इस संकल्प के साथ किया कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कि द्रोणाचार्य का वध कर दे, है ना। तो उस यज्ञ के फलस्वरूप उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम था दृष्ट। तो भविष्यवाणी हुई देववाणी, बादल गरजे बड़ी जोर से और एकदम आवाज आई कि पुत्र मिल गया है तुम्हें, ये द्रोणाचार्य को मार देगा। चारों तरफ बात फैल गई, तो द्रोणाचार्य को भी पता चल गया कि भैया एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो मुझे मार देगा। लेकिन वो जो बच्चा है वो जब गया द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए, है ना, तो द्रोणाचार्य ने उसको मना नहीं किया, होगा तू शिक्षा लेके मुझे मारेगा, भाग जाए यहाँ से, ऐसा नहीं बोला। तो वो दृष्टद्युम्न आया तो द्रोणाचार्य ने उसको अच्छे से शिक्षा दी। तो कई लोग बोलते हैं ना कि द्रोणाचार्य तो अच्छा बंदा नहीं था, है ना, क्यों अच्छा बंदा नहीं था, क्योंकि उसने एकलव्य को भगा दिया था उसने, नहीं, एकलव्य बता रहे कौन है, कौन है एकलव्य, जिसने उनके काट के अंगूठा काट के दे दिया था, है ना। तो लोग बोलते हैं देखो एकलव्य कितना महान, द्रोणाचार्य कितना घटिया, शिक्षा लेने गया था एकलव्य, शिक्षा देनी चाहिए थी, उसने भेदभाव किया द्रोणाचार्य ने। लेकिन द्रोणाचार्य जैसे जो गुरु थे वो भेदभाव नहीं करते थे, वो कोई भी व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए आएगा तो वो पहले उसको जज करते थे, उसको टेस्ट करते थे कि ये शिक्षा लेने के योग्य है भी या नहीं। तो जब एकलव्य गया शिक्षा लेने के लिए तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये बहुत अहंकारी व्यक्ति है, ये इसको अगर मैंने शिक्षा दे दी तो उत्पात मचाएगा ये समाज में, तो उन्होंने उसको मना कर दिया उसको शिक्षा देने से, है ना। और उन्होंने बोला देखो तुम युद्ध मत सीखना, ये युद्ध कौशल मत सीखना। लेकिन एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य ने अपने तथाकथित गुरु की बात नहीं मानी, है ना। वो गया उसने पुतला बनाया द्रोणाचार्य का और युद्ध करना सीख लिया। अगर वाकई में वो गुरु भक्त होता, आज्ञाकारी होता, तो गुरु की बात मानता ना, गुरु ने बोला भी मत सीखना, लेकिन उसने सीखा उसको, उसको फिर भी बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने उसको कहा चल तूने सीख लिया अब अंगूठा दे दे मेरे को। तो अंगूठा दे दिया, फिर भी कौरवों की तरफ से लड़ा और बाद में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये जो एकलव्य था ये बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, ये इसको वो युद्ध कला सीखने के योग्य नहीं था। तो द्रोणाचार्य की कोई गलती नहीं थी कि उसको नहीं सिखा रहे थे, वो उसके पात्र नहीं था इस कारण से नहीं सिखा रहे थे। हाँ, और सीख के भी उसने गलत कामों में ही उपयोग किया उसका, अच्छे काम में उपयोग नहीं किया उसका, है ना। तो जो लोग एकलव्य की जय जयकार करते हैं और दुर्योधन को एकलव्य के मुकाबले दुर्योधन को नीचा दिखाते हैं, वास्तव में वो ठीक से समझ नहीं पाए बात को, है ना, उनको पूरे तथ्य ठीक से पता नहीं है उनको, है ना। द्रोणाचार्य में कमी नहीं थी कोई भी, हाँ, अगर द्रोणाचार्य में लेश मात्र भी स्वार्थ होता तो वो कभी दृष्टद्युम्न को नहीं सिखाता, जिसके बारे में भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई कि भैया ये मारेगा उसको, उसको कौन सिखाया। लेकिन द्रोणाचार्य ने सिखाया, क्योंकि पात्र व्यक्ति अगर कोई आएगा आपके पास शिक्षा लेने के लिए तो उसको मना नहीं कर सकते, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सो दुर्योधन ने उसको बोला द्रोणाचार्य को कि देखो द्रुपद के पुत्र ने ये सारी पूरी ये रणनीति बनाई है हमसे लड़ने के लिए, और देखो कितनी अच्छी बनाई है, है ना। तो ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा इसलिए बोला कि देखो आपने एक गलती तो कर चुके हो, अपने शत्रु को आपने युद्ध कला सिखा दी, अब दूसरी गलती मत करना प्लीज, कि पांडवों के प्रति और दृष्टद्युम्न के प्रति आप नरम हृदय से मत लड़ना, उनको दुश्मन की तरह देखना उनको, है ना। ऐसा नहीं हो कि नरम हृदय से लड़ो और खुद भी मारे जाओ और मुझे भी मरवा दो, है ना। तो इसलिए द्रुपद का उन्होंने दृष्टद्युम्न नहीं बोला दुर्योधन ने, उसने बोला द्रुपद पुत्र, ताकि द्रुपद का नाम सुनकर उसको थोड़ा सा गुस्सा आए, है ना। ऐसे हम अपने व्यवहार में भी देखते हैं कि कई बार किसी को गुस्सा दिलाना हो या वो तंस कसना होगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के नाम तेरे उसने ऐसा कर दिया नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि फलाने ने ऐसा कर दिया, बोलेंगे तेरे भाई ने ऐसा कर दिया या तेरे बेटे ने ऐसा कर दिया उसको जलाने के लिए। तो यही दुर्योधन भी कर रहा है ना। तो अगला श्लोक जो है श्लोक नंबर 4, आप मेरे पीछे सुनो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो दुर्योधन कह रहा देखो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। फिर दोबारा द्रुपद का नाम लिया, बार बार द्रुपद का नाम ले रहा उसको गुस्सा दिलाने के लिए, है ना। और यहाँ पर वो अर्जुन से पहले भी भीम का नाम ले रहा है, हालांकि अर्जुन धनुर्धर धनुर्धर है, सबसे खतरनाक है, मतलब हाँ शिवजी से भी लड़ाई कर ली उसने और अनेक दिव्य अस्त्र थे उसके पास, लेकिन भीम का नाम पहले ले रहा है क्योंकि भीम से सारे डरते थे, है ना। और भीम ने युद्ध से पहले 3 प्रतिज्ञाएं ली हुई थी, है ना। कौन कौन सी प्रतिज्ञा ली थी भीम ने? दुशासन का उसने बोला था, ये छाती फाड़ के तेरा हार्ट निकाल लूंगा और लहू पीऊंगा। अच्छा एक तो ये थी और दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, और तीसरा उसने क्या था?
दुशासन के लहू से द्रौपदी के केश।
वो तो चलो एक ही बात। और तीसरा उसने बोला था सारे जितने 100 पुत्र हैं मैं ही करूंगा उनका पति। कई बार तो युद्ध में ऐसी सिचुएशन आई थी कि अर्जुन या युधिष्ठिर नकुल सहदेव कोई भी वो दुर्योधन के किसी भाई को मार सकता था, लेकिन छोड़ देते थे, जा बेटा तेरे कोई और ही तेरा संहार करेगा। तो क्योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं रखी थी ना कि मैं मानूंगा भैया और कोई हाथ नहीं लगाएगा, है ना। जैसे आप कई फिल्में भी पुराने, अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है, पहली फिल्म आते ना और सब पीछे हट जाओ, है ना, मैं लड़ूंगा इससे, कोई बीच नहीं आएगा। घातक पिक्चर में, घातक, अच्छा घातक पिक्चर। सो अब भीम की प्रतिज्ञा पूरी करवानी थी, कई लोगों ने कई कई प्रतिज्ञाएं कर रखी थी, है ना। तो सब लोग ध्यान रखते थे कि भैया प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो तो वो जीवित नहीं रह सकता, उसको अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे, है ना। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा क्या ली थी, हाँ चलो एक ये थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा मैं, है ना। क्यों? क्योंकि जयद्रथ ने वो अभिमन्यु को मारने में उसकी अहम भूमिका थी, है ना। तो उसकी प्रतिज्ञा भगवान ने पूरी करवाई। लेकिन अर्जुन ने एक बड़ी और अजीब सी प्रतिज्ञा ली थी एक बारी, नहीं हम तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात कर रहे हैं। सो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ये भी, वो तो ब्राह्मण के पुत्रों को फिर वो गए वहां पर, हाँ कर्ण के बारे में क्या किया था, हाँ वो तो एक प्रतिज्ञा है, उसकी उस जो प्रतिज्ञा की मैं बात करने वाला हूँ, आपको से किसी को पता नहीं होगा वो प्रतिज्ञा का, जब तक आप महाभारत पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा वो प्रतिज्ञा क्या थी। सो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया, कायर बोल दिया, भैया गंडी छोड़ दे अपना, तो कह रहा यहाँ तो भैया उसको मार दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा। तो अर्जुन लड़ रहा था भीष्म पितामह से, तो उतने गुस्से से नहीं लड़ रहा था, तो तीर मारता था लेकिन मर्म स्थानों पे नहीं मार रहा था। युधिष्ठिर देख रहा था कि क्या मतलब मजाक हो रहा है क्या, तो खैर घड़ी देख रहे थे बार बार युधिष्ठिर महाराज, यार युद्ध खत्म हो उसको जाकर बोलो कि क्या कर रहा था, मरवाएगा क्या हमें, चलो शाम हो गई युद्ध खत्म हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज के टेंट में सारे इकट्ठे हो गए, तो जो उसको लटाड़ा अर्जुन को, अर्जुन भी सुनता रहा चुप करके, लताड़ते लताड़ते युधिष्ठिर ने बोल दिया क्या कायरों की तरह लड़ रहे थे, फेंक दे अपना गांडी अगर ऐसे लड़ना है तो। बस उसने कहा भाई अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अबे कैसे मरना पड़ेगा भैया, मैंने ये प्रतिज्ञा ले रखी। अब कितना धर्म संकट है, एक युधिष्ठिर है इधर अर्जुन है, या तो भाई तू मर जाए या मैं मर जाऊं, नहीं। अब मतलब युधिष्ठिर मर गया तो युद्ध खत्म, क्योंकि वही बड़ा है, अब किसके लिए युद्ध करना है। अर्जुन मर गया तो युद्ध खत्म, जीतेंगे कैसे अर्जुन के बिना, बड़े धर्म संकट खड़ा हो गया, क्या करें। तभी वहां पे कौन आ गए, भगवान कृष्णा। वह क्या हुआ, क्या हुआ, दो मिनट बताओ तो सही क्या हुआ, ऐसे ऐसे बोल दिया मुझे भैया ने, अब तो मारना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो किसी की बेइज्जती करना उसको मारने के समान ही है, तो तुम युधिष्ठिर की बेइज्जती कर दो, अगर तुमने बेइज्जती की समझो मार दिया, है ना। ये ऐसा पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कि अचानक से ये चीज निकाल के ले आए, जयद्रथ के उसमें किया था ना, उसके पांच जगह से बाल छोड़ के साफ सफा चट कर दिया था उसको, जब उसने द्रौपदी का हरण किया था उसने, है ना। तो उस समय भी भगवान ने बोला चलो इसकी बेइज्जती करो और छोड़ दो, बेइज्जती करना मतलब मारने के समान है ना। ऐसे यशोधामा के बारे में भी ऐसे ही किया, आंख निकाल ली उसकी, नहीं मणि जो थी वो निकाल ली और उसको कहा चल भैया अब तो भटकता रहे, तो दीर्घ जीवी है ना, भटकता है आज भी भटकता है यशोधामा। आप में से किसी को दिखा दो नहीं सो इस तरह से मतलब अनेक जो कई योद्धाओं ने कई प्रतिज्ञाएं की थी, तो भगवान उनको, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव युद्ध जीत ही नहीं सकते थे, है ना। क्योंकि जैसे अभी हमने बताया युधिष्ठिर महाराज की अगर मृत्यु हो जाए तो खत्म, अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो खत्म। तो ये जो युद्ध भी हुआ ये भी भगवान ने, भगवान की इच्छा थी तो पांडव जीते, नहीं तो जीत नहीं सकते थे, है ना। इसी तरह से जैसे हनुमान जी ने अनेक इतने महत्वपूर्ण कार्य किए, एक छलांग में लंका पहुंच गए, नहीं तो लोगों ने बोला कितनी बढ़िया बात की, तो उन्हें बोला मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान राम का प्रताप है ना। इसी तरह से पांडवों ने युद्ध जीता लेकिन सारा श्रेय भगवान कृष्ण को जाता है। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने पग पग पर उनको सहायता की, शक्ति दी, बुद्धि दी, जिससे कि पांडव जीत पाए, है ना। बिना भगवान के सहयोग के, भगवान के आशीर्वाद के युद्ध थोड़ा ना जीत सकते थे वो, नहीं। सो आगे उसने दुर्योधन ने आगे बोला, अगला श्लोक पांचवा श्लोक, सो आप मैंने पीछे जाइए, दृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोचित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। नरपुंगवा मतलब होता है जो स्ट्रांग होता है ना, जो हीरो टाइप, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, उसके लिए नरपुंगवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो दुर्योधन ने कहा इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकिता, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। फिर आगे अर्जुन ने उसने दुर्योधन ने बोला युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथाः। तो दुर्योधन का पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र, ये देखो यहाँ लिखा ना सौभद्रो, सौभद्रो का मतलब है सुभद्रा का पुत्र। फिर है द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च मतलब जो द्रौपदी के जो पुत्र थे, पांच पुत्र थे ना द्रौपदी के, है ना, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायकाहं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि मे। तो दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य को, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो जब दुर्योधन बात कर रहा था द्रोणाचार्य से तो सारे और लोग भी सुन रहे थे, है ना, भीष्म पितामह भी खड़े थे और सैनिक भी सुन रहे थे। तो दुर्योधन ने पहले शत्रु पक्ष की जो शक्ति है उसकी असेसमेंट की, उसका आंकलन किया कि शत्रु के पास क्या उसके स्ट्रांग पॉइंट है, क्या उसके गुण है, क्या कमियां है। फिर उसने कहा यार सारे डर ना जाए मेरी सेना के लोग। तो अब दुर्योधन जो है वो अपनी सेना के बारे में बता रहा है कि मेरी सेना में क्या क्या खासियत है ना। तो वो बोल रहा है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा कर्णश्च सोमदत्तिस्तथैवच। देखिए मेरी सेना में आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिष्ठ आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि जब वो अपनी सेना के लोगों के नाम गिना रहा था तो पहले उसने बोला भगवान, भगवान का मतलब है आप, है ना। तो उसने अब दो बंदे थे वहां पर इम्पोर्टेंट, भीष्म और द्रोणाचार्य, तो उसने सोचा किसका नाम लूं पहले। तो फिर उसने बहुत सोच समझ कर उसने पहले द्रोणाचार्य का नाम दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और क्षत्रिय का फर्ज है ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देना। तो दुर्योधन ने सोचा कि पहले अगर मैं भीष्म पितामह का नाम लूंगा द्रोणाचार्य नाराज हो जाएंगे, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं ना, पहले मेरा नाम क्यों नहीं लिया, या पहले मुझे आरती क्यों नहीं दिखाई। कई बार आपस में लड़ाई हो जाती है डिवोटीज में, है ना। तो दुर्योधन ने पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया कि ब्राह्मण है तो भीष्म पितामह रिस्पेक्ट देंगे कि पहले ब्राह्मण का आदर किया तो बुरा नहीं मानेंगे, है ना। तो इसलिए उसने पहले भीष्म द्रोणाचार्य का नाम लिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतने सारे नाम हम क्यों ले रहे हैं, हम हरे कृष्णा मंत्र का जप क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सारे नाम हम क्यों लिए जा रहे हैं, क्या पर्पज है। ऐसे भागवत में भी आप देखोगे कई जगह तो पूरे वंश के नाम दे रखे हैं, वो राजा था उसका बेटा ये, फिर उसका बेटा ये, फिर उसकी दो बेटियां, चार बेटे, फिर आगे उनका ये तीन बेटे आए, फिर आगे दो बेटे आए। तो कई बार लगता है कि मतलब इतने सारे वंश के नाम लोगों के गिनाने के मतलब पर्पस क्या है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी वस्तु कृष्ण से जुड़ जाती है वो कृष्ण के समान ही पवित्र हो जाती है, है ना। तो ये सारे लोग क्योंकि एक ही जगह इकट्ठे थे भगवान कृष्ण के साथ, तो भगवान कृष्ण का संग लेने के कारण ये सारे लोग उतने ही पवित्र हो गए हैं। और इनका अगर नाम लेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, हमारा मन पवित्र होगा, है ना। और प्रभुपाद ने आगे बताया, प्रभुपाद ने बोला देखो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों तरफ के लोग मर गए थे, है ना। पांडवों में भी सिर्फ 5 पांडव और सुभद्रा का जो अभिमन्यु का पुत्र है ना परीक्षित, जो कि गर्भ में था उस समय, है ना, सिर्फ वही बचे थे, सारे मर गए थे। और कौरवों की तरफ से भी सारे मर गए थे, एक अश्वत्थामा बच गया था, एक कृतवर्मा बच गया था, एक और बच गया था व्यक्ति। सो वहां से भी 3 व्यक्ति बचे थे, बाकी सब मर गए थे, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति में जितने भी लोग मरे वो सब भगवत धाम को प्राप्त हुए, है ना। तो भगवान की डांट और भगवान का स्नेह दोनों एक समान है। ऐसा नहीं है कि भगवान डांटेंगे तो बुरा है या भगवान प्यार से सहलाएंगे पुचकारेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। भगवान परम है, भगवान के लिए अच्छे बुरे का भेद नहीं है। भगवान अगर डांटेंगे किसी को मारेंगे उसको भी फायदा होगा, और भगवान अगर किसी को आशीर्वाद देंगे उसको भी फायदा होगा। इसी प्रकार जो गुरु होते हैं, गुरु भी अगर किसी को किसी की सराहना करें प्रशंसा करें उसको भी फायदा है, और किसी को अगर गुरु डांट दे तो उसको भी फायदा है। इसलिए कभी कोई वरिष्ठ वैष्णव भक्त अगर आपको कभी डांट दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर जो गुरु या वैष्णव अगर किसी को डांट दें, अगर आपको डांट दिया तो आपसे आपको उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब गुरु डांटते हैं तो वो ईर्ष्या से प्रभावित होकर नहीं डांटते, वो कल्याण से प्रभावित होकर डांटते हैं, उनके मन में कल्याण की भावना होती है ना। तो जब गुरु को लगता है कि इसको पुचकार के आशीर्वाद देके कल्याण होगा तो आशीर्वाद देते हैं, अगर उनको लगता है कि ये डांट सहने के योग्य है तो उसको डांटते हैं ताकि उसका फायदा हो, है ना। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए। सो यहाँ पर जब दुर्योधन नाम ले रहा था सारे योद्धाओं के, तो उसने नाम लिया विकर्ण का। तो विकर्ण इतना कोई महान योद्धा नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने नाम लिया। विकर्ण पास ही खड़ा था तो उसका मन थोड़ा सा टलमल सा हो रहा था, उसका मन विकर्ण का, यहां से लड़ू वहां से लड़ू क्या करूं। तो दुर्योधन ने राजनीति करके कि देखो विकर्ण भी कितना महान योद्धा है, विकर्ण का नाम लिया उसको पुचकारने के लिए, बेटा यहीं से लड़ता रहा है ना। ऐसे किसी को कोई व्यक्ति है उसका मन नहीं लग रहा किसी काम में, उसको बहुत उसकी प्रशंसा करो, है ना, तो वो अपने आप ही कहेगा यार चलो ठीक है अच्छा यहीं से कर लेता हूँ ये काम, है ना। तो उसको राजनीति के तहत दुर्योधन ने विकर्ण का नाम लिया, क्योंकि विकर्ण को अच्छा नहीं लगा था जब द्रौपदी का भी वस्त्र हरण कर रहे थे, उसमें विकर्ण को अच्छा नहीं लगा था। तो दुर्योधन ने सोचा कि भाग ना जाए, इसीलिए यहाँ पर इतने महान महान भीष्म द्रोण उनके साथ विकर्ण का नाम ले दिया, है ना, ताकि कहीं भाग ना जाए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले बहुत सारी कूटनीति चल रही थी, नहीं जैसे कुंती और कृष्ण ये गए थे किसके पास, कर्ण के पास गए थे, तो उसको बताया कि भैया तू तो कुंती पुत्र है आ जाओ इस तरफ आ जाओ, और जैसे पांचों पांडव सुख का भोग कर रहे हैं ऐसे तुम भी सुख का भोग करो, तुम तो युधिष्ठिर से बड़े हो तो राजा कौन बनेगा, राजा तुम बनोगे। कर्ण ने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे को मैं आपको ये जरूर वचन दे सकता हूं कि आपके पांच पुत्र जीवित रहेंगे, है ना। तो कर्ण ने कहा कि मैं चार आपके पुत्रों को हाथ नहीं लगाऊंगा, अर्जुन को सिर्फ मैं ही मार सकता हूं और मुझे सिर्फ अर्जुन मार सकता है, तो हम दोनों में से कोई मरा आपके पांच पुत्र खड़े रहेंगे आपके, तो उसमें कुछ शंका नहीं है, और अगर आपने राज्य मुझे दिया तो मैं तो दुर्योधन के प्रति मैं उसका कर्तव्य हूं, आप मुझे राज्य दे दोगे मैं दुर्योधन को जाकर दे दूंगा, तो मुझे राज्य का मुझे राज्य देने का कुछ फायदा नहीं है, है ना, क्योंकि मैं दुर्योधन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो मैं यहीं पे लड़ूंगा। तो दुर्योधन ने भी वो एक शल्य थे, शल्य है ना, वो पांडवों के लिए युद्ध करने आ रहे थे, तो बीच में उन्होंने सारे दुर्योधन ने शिविर वगैरह लगाए, अच्छा खिलाया पिलाया उनको, है ना। तो शल्य ने कहा जिसने ये प्रबंध किया है मैं उसका कृतज्ञ हूं, मैं उसी की ओर से लड़ूंगा, तो दुर्योधन आ गया मैंने किया था, तो चलो उसको मतलब अब शल्य वचन दे दिया था तो वहीं से लड़ना पड़ा। तो उसने बोला क्या चाहते हो, तो बोला यार कर्ण की ओर से कर्ण का वो बन जाओ आप सारथी, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट सारथी थे वो, तो अर्जुन का मुकाबला करना है तो भगवान कृष्ण के समान कोई एक्सपर्ट सारथी होना चाहिए ना, तो भगवान कृष्ण का सामना के समान मतलब इतने शक्ति इतने दक्ष सारथी थे कि भगवान कृष्ण के अगेंस्ट खड़ा किया उनको सारथी के रूप में। तो अब जब पांडव मिलने गए तो पांडवों ने कहा ये क्या कर दिया अंकल आपने, आप तो हमारे साथ थे आप वहां चले गए। तो बोला भैया मैं तो वचन दे चुका अब क्या करूं, तो बोला आप उसको गाली देते थे ना कर्ण को, आप कर्ण का मनोबल गिराते रहना। तो शल्य जो है वो लगातार जब कर्ण ने युद्ध करना शुरू किया भीष्म पितामह के उनके जब वो धरती पर गिर गए थे, तो फिर कर्ण आया था, पहले तो कर्ण आया नहीं था लड़ने के लिए, तो लगातार उसको बोलता रहा अबे तुझे कुछ आता नहीं है, तू हार जाएगा, वो अर्जुन है, तू कर्ण है, तेरे को इतनी विद्या नहीं है, तेरे को देख श्राप भी मिला हुआ है, कि तू है मौके पे भूल जाएगा, मोक्षण आने वाला है। तो उसको लगातार उसको बार बार उसका मनोबल तोड़ने का काम किया है ना। तो अगर मनोबल उसका खड़ा रहता हो सकता ज्यादा लड़ लेता, लेकिन वो शल्य ने बार बार उसका मनोबल तोड़ा उसका। तो सारी राजनीति चल रही थी युद्ध से पहले है ना। सो अगला जो श्लोक है नौवां श्लोक करे अन्य च भव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, उद्यत मतलब तैयार हैं। ये विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य जो ये शब्द है त्यक्त जीविता, इस पे बहुत क्या चाहिए तो? तो जो हमारे आचार्य हैं वो त्यक्त जीविता शब्द पे बहुत जोर दे रहे हैं, वो और बोल रहे हैं कि दुर्योधन के मुंह से देखो अपने आप ही निकल गया त्यक्त जीविता, अपना जीवन छोड़ चुके हैं है ना। तो अर्जुन इस बात को पहले से स्वीकार कर रहे हैं, सब मर चुके हैं। और भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी बोला है कि अर्जुन मैं सबको मार चुका हूं है ना, निमित्त मात्र भव सर्वे सांचे। तो भगवान ने भी बोल रखा है पहले, तो दुर्योधन भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर त्यक्त जीविता। यहाँ पर हालांकि अनुवाद है कि जीवन छोड़ने के लिए तैयार है अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं कि इस शब्द का मतलब ये भी है कि जीवन छोड़ चुके, मर चुके, खत्म हो गया खेल उनका है ना। सो अगला 10वां श्लोक है, ये आखिरी श्लोक हम देंगे आज। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्वीदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। तो हमारी शक्ति अपरिमेय है, इमेजरेबल, असीमित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर क्योंकि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, तो जैसे हमने बताया ना सारे लोग इकट्ठे थे वहां पर, तो भीष्म पितामह भी खड़े थे उधर। तो अब दुर्योधन यह कहना चाह रहा था द्रोणाचार्य से कि आप थोड़ा सा मतलब सावधान होकर लड़ना, थोड़ी एक्स्ट्रा फाइट करना, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो उनका स्नेह है पांडवों के प्रति। तो उसने एक शब्द प्रयोग किया, उसने अपर्याप्तम तद अस्माकम, कि हमारी जो शक्ति है अपर्याप्तम। तो अपर्याप्त के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है असीमित जो कि यहाँ पर प्रयोग किया गया, और एक अपर्याप्त का मतलब होता है कम है ना। तो दुर्योधन ने दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को आंख मारी कि अपर्याप्तम है ना, कि आप समझ लो अपर्याप्तम। आप भीष्म पितामह ने मतलब समझा कि अपर्याप्तम मतलब असीमित, मैं हूं असीमित, तो दुर्योधन भाई तारीफ कर रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या मतलब दिया, अपर्याप्तम, कम है, हाँ, क्योंकि वो कमजोर आदमी है, वो ठीक से लड़ेगा नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। तो इससे पता चलता है कि जो दुर्योधन है वो काफी एक्सपर्ट राजनीतिज्ञ था, लेकिन क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं था, क्योंकि उसमें अपनी प्रजा को भगवान की सेवा में लगाने का गुण नहीं था, इसीलिए भगवान की इच्छा थी कि जो धर्म के प्रतिनिधि हैं युधिष्ठिर, उनको राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, ना कि दुर्योधन को। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। हमने पहले 10 श्लोक कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो हम ऐसे ही प्रयास करेंगे कि हर बार 5, 7, 8 जितने भी श्लोक हम कवर कर सकें हम।